अच्छा भाई, देखिए आगे सबक भाई, मतन देखिए पहले। फसल फी तस्दीकात अलकजियतु कौलुन यहतमिलु सिद्क वल किज़्ब फइनकान अलहुक्म फीहा बिथुबूति शैइन लिशैइन औ नफ़यिही अन्हु फहमलियतुन मूजिबतुन औ सालिबतुन ويسمى المحكوم عليه موضوعا والمحكوم به محمولا والدال على النسبة رابطة وقد استعير لها هو وإلا فشرطية ويسمى الجزء الأول مقدما والثاني تاليا. گزشتہ سبق میں ہم معرف کے بارے میں پڑھ رہے تھے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مختلف علوم میں مختلف چیزوں کی تعریفات آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہاں کسی علم میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ کسی چیز کی تعریف کیسے کرنی ہے، جبکہ علم منطق آپ کو بتلاتا ہے کہ تعریف کہتے کسے ہیں اور تعریف کیسے کی جائے گی، تعریف کی شرائط کتنی ہیں، تعریف کی اقسام کتنی ہیں. تو گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ تعریف جو ہے معرف الشیء ما یقال علیہ لافادت تصورہ، کہ کسی چیز کی تعریف وہ ہے جو جس کا حمل ہوتا ہے اس چیز پر تاکہ اس چیز کا تصور حاصل ہو جائے. اس چیز کا جیسے آپ کو کلمہ کی پہچان نہیں تھی تو صاحب ہدایت و نح اور صاحب کافیہ وغیرہ نے اس کی تعریف کی کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، تعریف کی اور اس کی پہچان آپ کو کروا دی بھائی. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تعریف دو قسم کی ہے، ایک تعریف حقیقی ہے یا اس کو تعریف کامل کہہ لیں، اور دوسری جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ تعریف لفظی ہے بھائی. تعریف حقیقی وہ ہے جس کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے، صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے. جیسے آپ کو الکلمہ کی پہچان نہیں تھی یعنی اس کی صورت آپ کو حاصل نہیں تھی، تو جب تعریف کی گئی تو اس کی صورت اور پہچان آپ کو حاصل ہو گئی. صورت کا کیا معنی ہے؟ پہچان اس کی، تو اس کی پہچان آپ کو حاصل ہو گئی بھائی. اور یہ تعریف حقیقی ہے، اور ایک تعریف لفظی ہے جس میں تعیین صورت ہوتی ہے. مثلا عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں، اور اسی طرح شیر کے بہت سے نام ہیں، ایک نام ان میں غضنفر بھی ہے، غضنفر. تو غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن کسی ساتھی کے سامنے آپ نے یہ لفظ ذکر کیا، اسے یہ معنی معلوم نہیں تھا، تو اب وہ حیران ہوا کہ غضنفر کیا چیز ہے، تو آپ اس کو بتلاتے ہیں الغضنفر اسد، غضنفر کیا ہے؟ شیر ہے. تو یہاں دیکھو اسے کوئی نئی صورت حاصل نہیں ہوئی، شیر کی اس کو پہلے سے ہی پہچان تھی، لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ غضنفر یہ کس صورت کا نام ہے. تو اس کے ذہن میں ہزاروں لاکھوں چیزیں جو موجود تھیں، آپ نے تعین کر کے بتلا دیا کہ غضنفر یہ جو شیر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غضنفر. تو اس کی صرف تعین کر دی، صورت پہلے سے حاصل تھی. تو تعریف حقیقی میں کیا کیا جاتا ہے؟ صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے، اور تعریف لفظی کے اندر جو ہے وہ صرف تعین صورت ہوتی ہے بھائی، تعین صورت. اور تعریف حقیقی کے میں نے بتلایا تھا دو بڑے مقصد ہیں، یا تو اس کے ذریعے کسی چیز کی ذاتیات پر انسان مطلع ہو جائے، ذاتیات پر اطلاع حاصل ہو جائے کہ کسی چیز کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق بھائی. تو تعریف حقیقی کا جو بڑا مقصد ہے، یا تو اس کے ذریعے کسی چیز کی ذاتیات کا پتہ چل جائے، یا وہ جمیع مشارکات سے جدا ہو جائے. تو ان دو مقصدوں میں سے ایک مقصد ضرور حاصل ہونا چاہیے تعریف حقیقی میں. اور یہاں میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جب کسی چیز کی پوری حقیقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ پھر اب تمام مشارکات سے بھی جدا ہو جاتی ہے. انسان کی حقیقت حیوان ناطق جب آپ کو پتا چلی تو وہ جمیع مشارکات سے بھی جدا ہو گیا، کیونکہ انسان کے علاوہ اور کوئی حیوان ناطق نہیں ہے بھائی. تو جہاں پوری ماہیت کا پتا چلے گا وہاں جمیع مشارکات سے ضرور جدا ہوگا، لیکن جہاں جمیع مشارکات سے جدا ہو وہاں ضروری نہیں کہ پوری ماہیت کا پتا چل جائے. جیسے انسان کے بارے میں آپ صرف ناطق کہہ دیں، اب یہ جمیع مشارکات سے تو جدا ہو گیا، ناطق صرف انسان ہے لیکن پوری حقیقت کا پتہ نہیں چلا، یا آپ صرف ضاحک کہہ دیں तो जाहिक से भी इंसान का खासा है, इंसान के जमीय मुशारिकात से तो जुदा हो गया लेकिन उसकी पूरी हकीकत का पता नहीं चला। तो जहां पूरी हकीकत का पता चलेगा वहां जमीय मुशारिकात से भी जुदा हो जाएगी वो चीज, तो दोनों फायदे हासिल हो जाएंगे। लेकिन जहां जमीय मुशारिकात से जुदा हो वहां पूरी माहियत का पता चलना जरूरी नहीं। तो तारीफ हकीकी का कम से कम दर्जा यह है कि जमीय मुशारिकात से जुदा हो जाए, और अगर पूरी हकीकत का भी पता चल जाए ये तो और ज्यादा अच्छी बात है भाई। तो इन्होंने बतलाया आपको कि तारीफ किसे कहते हैं, मुआरिफ किसे कहते हैं, जिसके जरिए किसी चीज का तसव्वुर हासिल हो जाता है। और इसकी दो शर्तें इन्होंने जिक्र की, एक तो यह शर्त है कि मुआरिफ और मुआरफ में मुसावात होनी चाहिए, यानी अफराद के एतबार से, ये यूं कहें सिदक के एतबार से, जिस पर मुआरिफ सादिक आए उस पर मुआरफ भी सादिक आना चाहिए, और जिस पर मुआरफ सादिक आए उस पर मुआरिफ भी सादिक आना चाहिए, ये यूं कहें दोनों के अफराद मुसावी हों, बराबर हों, जो मुआरिफ है वो मुआरफ हो और जो मुआरफ हो वो मुआरिफ हो। ऐसा ना हो एक चीज पर मुआरिफ तो सादिक आ रहा है और मुआरफ सादिक नहीं आ रहा, या एक जगह मुआरफ तो सादिक आ रहा है लेकिन मुआरिफ सादिक नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसावात होनी चाहिए। तो मुसावात यूं कह लें अफराद के एतबार से, ये यूं कह लें सिदक के एतबार से, या आसान लफ्जों में कहें कि तारीफ को जामिअ मानिअ होना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि मुत्तरिद और मुनाकिस होना चाहिए। मुत्तरिद का क्या माना, जामिअ, मुनाकिस का क्या माना, मानिअ। जामिअ का माना है तारीफ जो है मुअर्रफ के तमाम अफराद का इहाता कर ले, और मानिअ का माना यह है कि कोई गैर इसमें तारीफ में दाखिल ना हो गई, और नीज तारीफ को अजला होना चाहिए, ज्यादा रोशन ज्यादा वाजे होना चाहिए, इसलिए क्योंकि मसलन आप कलीमा की तारीफ कर रहे हैं और कलीमा का आपको पता नहीं था, आगे लफ्जों वुजिया माना मुफरदीन की भी तारीफ उसके साथ की, अगर फर्ज कर ले वो तारीफ भी ऐसी होती उसका भी आपको पता ना होता फिर तो फायदा ही नहीं था भाई। आप तारीफ किसकी कर रहे हैं, कलीमा की, और तारीफ भी फर्ज करो ऐसी कर दी कि उसकी खुद उसकी भी आपको पूरी समझ में, सुनने वाले को समझ में नहीं आ रही, तो फिर तो ये दोनों बराबर हो गए। जितना उसको मुआरफ का पता था इतना ही उसको मुआरफ का भी पता है, तो ये तो उसको पता नहीं चलेगा उस चीज का, लिहाजा तारीफ को अजला होना चाहिए, ज्यादा वाजह ज्यादा रोशन होना चाहिए। जैसे मैंने उसकी मिसाल जिक्र की थी कि एक शख्स है उसको गेंडे के बारे में आप बतलाना चाहते हैं, गेंडे के बारे में उसे सिर्फ इतना पता है कि गेंडा हैवान है और कुछ नहीं पता, और इसे यह भी पता है कि हाथी हैवान है, हाथी को भी वो नहीं पहचानता। तो अब आप उसे गेंडे की पहचान करवाते हैं और कहते हैं शबीहुन बिलफीली, गेंडा जो है वो हाथी के मुशाबे होता है, तो गेंडे का उसको सिर्फ इतना पता है हैवान, और शबीहुन बिलफील, यहां फील हाथी के बारे में भी उसको सिर्फ क्या पता है कि वो भी एक हैवान है, उसको भी उसका पूरा पता नहीं। तो ये तो दोनों मुसावी हो गए एक दूसरे के वाजे होने में, तो यहां उसको कुछ फायदा नहीं होगा। गेंडे के बारे में उसे इतना पता है वो हैवान है, हाथी के बारे में भी सिर्फ इतना पता है वो हैवान है, तो कोई मजीद फायदा हासिल हुआ नहीं। तो लिहाजा तारीफ को ज्यादा वाजे होना चाहिए। या मसलन गेंडे के बारे में तो उसे पता कि वो हैवान है, लेकिन हाथी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, यह भी नहीं पता कि वो हैवान भी है या कोई और चीज है। तो अब आप उसको कहते हैं, वो उस गेंडे के बारे में पूछता है, आप कहते हैं शबीहुन बिलफीली, वो किसके मुशाबे है, हाथी। ये तो आपने तारीफ अख्फा के साथ कर दी, हाथी तो उसके लिए गेंडे से भी ज्यादा खफी है भाई, बात समझ में आ गई। तो लिहाजा तारीफ जो है अजला के साथ होनी चाहिए। और इसी तरह दूसरी मिसाल ले लें, जो मुतज़ाइफ़ैन हैं, जैसे इब्नुन, इब्नुन की तारीफ क्या है, मन लहुल अब, इब्न उसे कहते हैं जिसका बाप हो, और बाप किसे कहते हैं, मन लहुल इब्न, जिसका बेटा हो भाई। तो बेटे का पता तब चलेगा जब बाप का पता चले, बाप का पता तब चलेगा जब बेटे का पता चले, लिहाजा तारीफ यहां तो ये वाजह नहीं भाई, बेटे को जानने के लिए बाप को जानना पड़ेगा और बाप को जानने के लिए बेटे को जानना पड़ेगा, किसी एक का भी पता नहीं चलेगा। सूरत समझ में आ गई, वो मुतज़ाइफ़ैन ना हो भाई, मुआरिफ और मुआरफ आपस में मुतज़ाइफ़ैन ना हो, यानी एक का जानना दूसरे पर मौकूफ और दूसरे का जानना पहले पर मौकूफ हो। बेटा किसे कहते हैं, जिसका बाप हो, तो उसके लिए बाप को जानना पड़ेगा, और बाप किसे कहते हैं, उसके लिए किसको जानना पड़ेगा, बेटे को जानना पड़ेगा। या यूं कह लें उस्ताद किसे कहते हैं, जिसका शागिर्द हो, शागिर्द किसे कहते हैं? जिसका उस्ताद हो। तो यहां तो एक का भी पता नहीं चलेगा, लिहाजा तारीफ जो है वो अजला होनी चाहिए, ज्यादा वाज है कि सुनने वाले को पता चल जाए। तो लिहाजा तारीफ बिल आम भी सही नहीं, तारीफ बिल अखस भी सही नहीं, और इसी तरह मारिफत और जहालत में जो मुसावी हो या अखफा हो उसके लिए भी तारीफ सही नहीं है। तो तारीफ में कम से कम दर्जा यह है कि वह जमीय मुशारिकात से जुदा कर दे, और जमीय मुशारिकात से दो चीजें जुदा करती हैं, एक फसल है और एक खासा। फसल वो जात में दाखिल होता है, माहियत और हकीकत के अंदर दाखिल होता है, और खासा वो माहियत से खारिज होता है, वो सिफत होती है। तो तारीफ के अंदर जो तारीफ हकीकी है उसके अंदर फसल या खासा का होना जरूरी है, क्योंकि तारीफ का कम से कम दर्जा क्या है? वह जमीय मुशारिकात से जुदा कर दे, और आला दर्जा क्या है? कि पूरी माहियत का भी पता चल जाए। तो कम से कम दर्जा है तो यह है कि जमीय मुशारिकात से जुदा कर दे, और जमीय मुशारिकात से या खासा जुदा करता है या फसल जुदा करती है। तो तारीफ हकीकी में खासा या फसल का होना जरूरी है। अगर फसल होगा तो उस तारीफ को हद कहेंगे, और अगर खासा होगा तो उस तारीफ को रसम कहेंगे, रसम। और फिर इस हद में अगर जिनसे करीब साथ आ गई, यानी फसल करीब के साथ जिनसे करीब आ गई तो उसको हद ताम कहेंगे, और अगर जिनसे करीब न आई तो उसको हद नाकिस कहेंगे। और इसकी फिर दो सूरतें हैं, मसलन इंसान की तारीफ करना चाहता हूं, इंसान की फसल करीब क्या? नातिक, तो हद के अंदर नातिक जरूर आएगा। और इंसान का खासा क्या? जाहिक है या कातिब है या काबिल लिल इल्म है, कि उसमें इल्म की सलाहियत अल्लाह ने रखी है। तो ये है, ये खासे हैं इंसान के, इनमें से कोई एक खासा मसलन ले लिया जाहिक, तो जाहिक के साथ जो तारीफ की जाएगी वो क्या कहलाएगी? रसम। और नातिक के साथ इंसान की जो तारीफ की जाएगी वो हद, हद कहलाएगी। और फिर इसमें अगर इनके साथ जिन से करीब आ गई, मसलन इंसान की तारीफ क्या करते हैं आप? हैवान नातिक, तो इसको क्या कहेंगे? इसमें फसल करीब भी आ गई, नातिक आया, और जिन से करीब इंसान के क्या है? हैवान, वो भी आ गई, तो इसको हद ताम कहेंगे। क्या कहेंगे? हद ताम कहेंगे। और ये सबसे आला दर्जे की तारीफ है, क्योंकि नातिक आया, इसने जमीय मुशारिकात से भी जुदा कर दिया, और जिनसे करीब भी आ गई तो इंसान की पूरी हकीकत का पता चल गया कि इंसान की हकीकत क्या है? हैवान नातिक। पूरी हकीकत का भी पता चल गया और जमीय मुशारिकात से भी जुदा हो गया, और तारीफ हकीकी के यही दो तो बड़े मकसद थे, तो लिहाजा ये सबसे आला दर्जे की तारीफ है। जबकि दूसरी सूरत ये है कि जिनसे करीब ना आए, हद है, हद में क्या जरूरी? फसल। इस फसल के साथ अगर जिनसे करीब ना आए तो इसको हद नाकिस कहेंगे। और इसमें फिर दो सूरतें हैं, या सिरे से कोई जिन्स लाओ ही ना, सिर्फ नातिक कहो तो भी ये हद नाकिस, या जिन्स तो लाओ लेकिन बाईद वाली ले आओ जिसमें नातिक कह दो, क्या कह दो? या जौहर नातिक कह दो, तो ये क्या है? ये हद नाकिस है। तो हद ताम में क्या जरूरी? जिनसे करीब हो, और हद नाकिस में जिनसे करीब ना हो, ना होने की दो सूरतें हैं, सिरे से कोई जिन्स ही ना हो या हो तो लेकिन करीब वाली जिन्स ना हो, दोनों सूरतें हद नाकिस में आ गई। इसी तरह रसम, रसम में खासे का होना जरूरी है, जैसे इंसान की आप तारीफ करने लगे तो जाहिक जरूर लाना पड़ेगा, या कातिब जरूर लाना पड़ेगा, या काबिल लिल इल्म जरूर लाना पड़ेगा, और साथ अगर जिन से करीब भी ले आए, यानी हैवान उन कातिब उन, तो ये क्या है? रस्में ताम है। क्या है? ताम है। और अगर जिन से करीब साथ ना लाए, फिर उसमें दो सूरतें हैं, सिरे से कोई जिन्स लाए ही ना, या लाए तो लेकिन बईद लाए, तो ये दोनों सूरतों में ये क्या होगी? रस्म नाकिस होगी। जैसे इंसान की रस्म नाकिस सिर्फ जाहिक कह दो, ये भी क्या है? रस्म नाकिस। सिर्फ खासा आया, या साथ क्या ले आओ? जिस्म ले आओ, जिनसे बईद ले आओ, जिस्मुन जाहिकुन, ये भी क्या है? रस्म नाकिस है। बात समझ में आ गई। और आपने यह भी पढ़ा कि हद और रसम के दरमियान फर्क बड़ा मुश्किल है, किसी तारीफ को हकीकतन हद करार दिया जाए और किसी तारीफ को हकीकतन रसम करार दिया जाए, यह बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्योंकि हद और रसम में इश्तिबा आ जाता है, इस वजह से कि जिंस और आरज आम में इश्तिबा होता है। हो सकता है जिसे हम जिंस करार दे रहे हों वो आरज आम हो, और जिसे हम आरज आम करार दे रहे हों वो क्या हो, जिंस हो, क्योंकि दोनों मुख्तलिफ हकीकतों के अफराद पर बोली जाती हैं। इसी तरह इश्तिबा आता है फसल और खासा के दरमियान भी। फसल भी एक हकीकत वाले अफराद पर बोली जाती है लेकिन माहियत के अंदर दाखिल होती है, और खासा भी एक हकीकत के अफराद पर बोला जाता है लेकिन हकीकत से खारिज होता है, लेकिन इन दोनों में इश्तिबा है। हो सकता है जिसे हम फसल करार दे रहे हों वो हकीकत में क्या हो, खासा, और जिसे हम खासा करार दे रहे हों वो हकीकत में क्या हो, फसल हो। तो इसी पर तो रसम और हद का दारोमदार है। फसल हो तो हद कहते हैं, खासा हो तो रसम कहते हैं। तो जब इन दोनों में इश्तिबा आ गया तो हद और रसम में भी इश्तिबा आ गया। हो सकता है जिसे हम हद कह रहे हैं वो रसम हो और जिसे रसम कह रहे हैं वो हद। तो उलमा फरमाते हैं हकीकी हद और हकीकी रसम में फर्क करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, बस तारीफ का मकसद हल होना हासिल होना चाहिए, और तारीफ का मकसद क्या है कि कम अज कम दर्जा यह है कि जमीय मुशारिकात से कोई चीज अलहदा हो जाए, फिर माहियत का भी साथ पता चल जाए तो वह सबसे आला दर्जा है। बात समझ में आ गई। उसके बाद इन्होंने आपको यह भी बतलाया था कि आरज आम जो है, आरज आम के जरिए तारीफ दुरुस्त नहीं है, आरज आम के जरिए तारीफ दुरुस्त नहीं, क्योंकि तारीफ हकीकी के दो बड़े मकसद हैं, या तो किसी चीज की पूरी हकीकत का पता चल जाए या वो जमीय मुशारिकात से जुदा हो जाए। और इंसान की तारीफ में जब आप माशी कहें यानी आरज आम लेकर आए तो कोई भी मकसद हासिल नहीं हुआ, ना तो माशी से इंसान की हकीकत का पता चला और ना वो जमीय मुशारिकात से जुदा हुआ। इसलिए उलमा फरमाते हैं आरज आम के जरिए तारीफ सही नहीं। हां, अगर कई आरज आम इकट्ठे कर दिए और मिलकर वो खासा बन गए तो फिर ऐसे अरज आम के लिए तारीफ सही है, जैसे इंसान की तारीफ करना माशी और मुस्तकीमुल कामा से। माशी, माशी इंसान भी है और हैवानात भी हैं, सिर्फ माशी का इंसान का पता नहीं चलता। इसी तरह मुस्तकीमुल कामा, सीधे कद वाला, अपने पैरों पर सीधा खड़ा होने वाला, वो इंसान भी है और दरख्त भी है। तो सिर्फ मुस्तकीमुल कामा का हो तो भी इंसान का पता नहीं चलता क्योंकि वह तो दरख्त भी है। लेकिन जब दोनों को मिला दिया, माशी मुस्तकीमुल कामा, कि माशी भी हो और मुस्तकीमुल कामा भी हो, तो अब यह खासा बन गया, क्योंकि माशी भी हो और मुस्तकीमुल कामा भी हो, यह तो सिर्फ इंसान है और कोई हैवान नहीं और दरख्त वगैरह भी नहीं है। उसके बाद इन्होंने तारीफ नाकिस के बारे में बतलाया था कि एक तारीफ नाकिस भी होती है। तारीफ नाकिस वो है जिसके जरिए बाज़ मुशारिकात से जुदा करना मकसूद होता है, सबसे जुदा करना मकसूद नहीं होता, तो वो तारीफ नाकिस आम के जरिए भी जायज करार दी है मुतकद्दिमीन ने और अखस के जरिए भी जायज करार। जैसे इंसान की तारीफ की जाए हैवान से, अब इंसान की तारीफ हैवान से की और हैवान तो आम है इंसान के मुकाबले में, लेकिन यह तारीफ जायज है क्योंकि मसलन मकसद यह था आप इंसान को शजर और हजर से जुदा करना चाहते थे, किससे, शजर और हजर से जुदा करना चाहते थे, और जब आपने हैवान कहा तो शजर और हजर तो हैवान नहीं तो उनसे जुदा हो गया, या आपने माशी कह दिया, अब माशी तो आरज आम है लेकिन इस माशी ने इंसान को क्या किया, शजर और हजर से जुदा कर दिया, उनमें से कोई भी माशी नहीं है, तो तारीफ बिल आम भी जायज है। किस में, तारीफ नाकिस में। अभी तक जो जिक्र हो रही थी वो तारीफ कामिल थी या तारीफ हकीकी थी, ये तारीफ नाकिस है। तारीफ नाकिस का मकसद क्या होता है, बाज़े मुशारिकात से जुदा करना, और जब मैं सिर्फ इंसान के बारे में कोई मुझसे पूछे और मैं कहूं हैवान तो शजर और हजर से जुदा हुआ या नहीं, इसी तरह, या मैं सिर्फ क्या कह दूं माशी, तो यह भी तारीफ है इंसान की, लेकिन यह तारीफ नाकिस है, बाज से क्या कर देती है जुदा। तो बाज औकात सबसे जुदा करना मकसद होता है, बाज औकात बाज से जुदा करना मकसद होता है, जहां बाज से जुदा करना मकसद हो वहां तारीफ नाकिस भी सही है। उसके बाद तारीफ लफ्जी के बारे में बात आई थी। तारीफ लफ्जी इन्होंने बताया कि तारीफ लफ्जी वो है जिसके जरिए लफ्ज के माना की वजाहत की जाती है। जैसे आपके साथी को पता नहीं था कि गजनफर किस चीज का नाम है, तो अल गजनफरु असदुन, आप असद के लफ्ज के जरिए आपने उसकी क्या कर दी, वजाहत कर दी, उसका माना बयान कर दिया, इसको तारीफ लफ्जी कहते हैं। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि तारीफ हकीकी या तारीफ कामिल के जरिए सूरत गैर हासिला को हासिल किया जाता है, और तारीफ लफ्जी के जरिए تعین صورت کی جاتی ہے وہ صورت جو پہلے سے حاصل ہے. طریقہ سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح جب بھی آپ کسی چیز کی تعریف کرنے لگیں تو اس کو کم از کم درجہ یہ ہے جمعی مشارکات سے جدا کر دیں, اور اگر اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کی ماہیت کا بھی پورا پتہ چل جائے تعریف سے. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر اس کے بعد آخر میں انہوں نے فف ہم کہا تھا, یا تو اس کے ذریعے اشارہ تھا تعریف حقیقی اور تعریف لفظی میں فرق کی طرف, کہ تعریف حقیقی میں تحصیل صورت ہوتی ہے اور تعریف لفظی میں تعیین صورت ہوتی ہے. اور یا فف ہم کے ذریعے اشارہ ہے, جو بعض مناطقہ نے کہا کہ جو تعریف لفظی ہے یہ تصور ہے ہی نہیں, یہ تصدیق کی قسم ہے. یہ کس کی قسم ہے؟ تو جب یہ تصدیق کی قسم ہے تو اس کو تصور کی بحث میں نہیں ہونا چاہیے. کہاں ہونا چاہیے؟ تصدیق کی بحث میں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ طریقہ آ گیا کسی چیز کی آپ نے تعریف کیسے کرنی ہے. آگے دیکھیے بھائی, فصل فی التصدیقات القضیت قول یحتمل الصدق والکذب فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية موجبة أو سالبة ويسمى المحكوم عليه موضوعا والمحكوم به محمولا والدال على النسبة رابطة وقد استعير لها هو وإلا فشرطية ويسمى الجزء الأول مقدما والثاني تاليا. تصدیقات کے بارے میں بحث شروع ہوئی. بھئی آپ کو شروع میں انہوں نے بتلایا تھا کہ منطق کا موضوع وہ معرف اور حجت ہیں, منطق کا موضوع معرف اور حجت ہیں. معرف کسے کہتے تھے؟ وہ معلوم تصورات جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں؟ مجہول تصور تک. اور حجت کسے کہتے ہیں؟ وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں؟ مجہول تصدیق تک. جیسے مثلا دیکھو میں آپ کے سامنے دو تصدیقات بولوں گا, تیسری تصدیق خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. زید درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہے اور درجہ ثالثہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. اس سے ایک اور بات آپ کو معلوم ہو گئی, کیا؟ کہ زید بڑا منطقی ہے. دیکھو میں نے تو یہ نہیں کہا, لیکن یہ دو تصدیقوں سے ایک تیسری تصدیق خود بخود آپ کو معلوم ہو گئی, تو یہ کیا ہے؟ حجت ہے. تو منطق کا موضوع وہ معرف اور حجت ہیں. معرف وہ معلوم تصور جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں؟ مجہول تصور تک. جیسے ابھی انسان کا آپ کو پتا نہیں تھا, حیوان ناطق کے ذریعے جب اس کی تعریف کی گئی آپ کو انسان کی حقیقت کا پتا چل گیا, تو یہ کیا ہے؟ یہ حیوان اور ناطق, اس نے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا؟ انسان تک پہنچا دیا, تو یہ ہے معرف. اور اسی طرح دو معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں, اس کو دلیل کہتے ہیں, اسی طرح اس کو حجت بھی کہتے ہیں, اسی طرح اس کو شاہد بھی کہتے ہیں. تو منطق کا موضوع یہ معرف اور حجت ہیں. دیکھو ساری تصور کی بحثیں کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے معرف کی تعریف کر دی. معرف کسے کہتے ہیں؟ اس کی شرطیں کیا ہیں؟ اس کی قسمیں کون سی ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب منطق کا موضوع کیا چیز؟ معرف اور حجت. معرف کا بیان ہو گیا, اب کس کا بیان چاہیے؟ حجت کا بیان چاہیے. لیکن آگے صاحب کتاب نے تصدیقات کا بیان شروع کر دیا. توجہ ہے؟ وجہ یہ کہ حجت وہ تصدیقات سے ہی بنتی ہے. تصدیقات کا آپ کو پتا ہوگا تو حجت آپ کو سمجھ میں آئے گی, تصدیقات کا پتا نہیں تو حجت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے معرف وہ کس سے بنتا ہے؟ معرف کا سمجھنا موقوف تھا کلیات خمسہ پر, کیونکہ معرف بنتا ہی کس سے ہے؟ اس میں فصل چاہیے یا نہیں چاہیے, خاصہ چاہیے یا نہیں چاہیے, جنس چاہیے یا نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا معرف, چونکہ معرف کا سمجھنا موقوف تھا کلیات خمسہ پر, لہذا معرف سے پہلے انہوں نے کس کو ذکر کیا؟ کلیات خمسہ کو ذکر کیا. اسی طرح آگے اب حجت رہ گیا. حجت کا بیان موقوف ہے کس کے سمجھنے پر؟ تصدیقات کے سمجھنے پر. اس لیے صاحب کتاب معرف کے بیان کے بعد کس کو لے کر آئے؟ تصدیقات کو, کیونکہ آگے وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ حجت اور دلیل کو یا شاہد کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں فصل فی التصدیقات، ای ھذا فصل فی التصدیقات، یہ فصل ہے فی التصدیقات ای فی بیان التصدیقات یا فی بحث التصدیقات، یہ فصل ہے تصدیقات کے بیان میں. القضیہ قول یحتمل الصدق والکذب، قضیہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ قضیہ یاد رکھو، قضیہ جس کو نحو میں ہم جملہ خبریہ کہتے ہیں، ایک جملہ انشائیہ ہے ایک جملہ خبریہ. جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اسی طرح قضیہ بھی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اس کو قضیہ کہتے ہیں، یا مشدد ہے بھائی قضیتن. تو کہتے ہیں القضیت قول یحتمل الصدق والکذب، قضیہ ایسا قول ہے یحتمل الصدق والکذب جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہو. قضیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا قول جو صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہو اس کو قضیہ کہتے ہیں. میں نے کہا زید کھڑا ہے، دیکھو اس میں صدق کا بھی احتمال اور کذب کا بھی احتمال. میں نے کہا زید محنتی ہے، اس میں صدق کا بھی احتمال، اس میں کذب کا بھی احتمال ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قضیہ القضیہ تو قول یحتمل الصدق والکذب، قضیہ ایسا قول ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہو. آپ کو شرح میں بتلائیں گے کہ یہ لفظ قول لے کر آئے، اور قول بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ قول تو لفظ کا نام ہے. عربی زبان میں قول کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو. کسی نے کوئی بات کی تو کہتے ہیں یہ اس کا قول ہے، یہ اس نے کہا ہے. قول کا معنی ہے نا بات. تو عربی زبان میں قول لفظ کو کہتے ہیں، اور لفظ یاد رکھو لفظ اس میں جنس ہے، قلیل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کثیر پر بھی. ایک ہے مفرد اور ایک ہے جمع اور ایک ہے اس میں جنس. دیکھو میرے سامنے ایک کتاب ہو میں کیا کہوں گا؟ یہ کتاب ہے. دو یا زیادہ کتابیں ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ یہ کتابیں ہیں. دیکھو لفظ ہی میں نے بدل دیا، جمع کا لفظ لے آیا. دو یا زیادہ کتابیں ہوں تو میں کبھی نہیں کہوں گا یہ کتاب ہے، بلکہ میں کیا کہوں گا؟ یہ کتابیں ہیں، جمع کا لفظ لے کر آؤں گا اس کے لیے. لیکن اس میں جنس وہ اسی طرح رہتا ہے، وہ قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ایک کتاب تھی تو آپ نے کہا کتاب، دو یا زیادہ ہوئی تو آپ نے کیا کہا؟ کتابیں، جمع کا لفظ لائے. لیکن انسان ایک ہے، اب تب بھی آپ کہیں گے انسان ہے. دو یا زیادہ ہو تب بھی آپ کیا کہیں گے؟ یہ انسان ہے. ہزار ہو تب بھی آپ کیا کہیں گے؟ یہ انسان ہے. دیکھو لفظ نہیں بدل رہے آپ. اس کو کہتے ہیں اس میں جنس، جس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک پر بھی ہوتا ہے اور زائد پر بھی ہوتا ہے. یہ ہے اس میں جنس بھائی، اس میں جنس. تو یہ جو یاد رکھو، یہ جو لفظ ہے نا لفظ، یہ اس میں جنس ہے. یہ کیا ہے؟ مصدر ہے نا، مصدر اس میں جنس ہوتا ہے. ایک ضرب ہو اس کو بھی ضرب کہیں گے، ہزار ضربیں ہو اس کو بھی ضرب کہیں گے، کیونکہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کیا ہوتا ہے؟ اس میں جنس. لفظ بھی کیا ہے؟ مصدر. اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ اس میں جنس. اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے. لہذا آپ نے صرف ایک لفظ بولا زید، یہ بھی لفظ ہے. آپ نے پورا جملہ بول دیا کہ زید کھڑا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ لفظ ہے. لفظ ایک ہو یا ہزار ہو، سب کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ. جمع بھی استعمال کر لیتے ہیں الفاظ، لیکن ضروری نہیں، بلکہ لفظ بھی بول سکتے ہیں. تو لہذا یہ جو قول ہے، یہاں قول آیا بھائی قول، اور عربی زبان میں قول کس کا نام ہے؟ لفظ کا نام ہے. کس کا؟ لفظ کا نام ہے. تو ہاں میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ لفظ قول کس کو کہتے ہیں؟ لفظ. تو آپ کے ذہن میں کہیں یہ نہ آئے کہ لفظ ایک کو کہیں گے، ایک سے زیادہ کو لفظ نہیں کہیں گے، بلکہ لفظ اس میں جنس ہے. تو لہذا عربی زبان میں قول کس کو کہتے ہیں؟ لفظ. لفظ یہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں، یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں، یہ سب کیا ہیں؟ لفظ ہیں. لفظ. تو عربی زبان میں قول کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو. اور میں نے شروع کتاب میں آپ کو بتلایا تھا کہ ہم جو کچھ زبان سے ادا کرتے ہیں پہلے ذہن میں سوچتے ہیں. دیکھو میں تقریر کر رہا ہوں مسلسل، لیکن کیا मेरी जुबान खुद ब खुद चल रही है या मैं पहले सोचता जा रहा हूं और फिर उस पर तकल्लुम करता जा रहा हूं, सोचता जा रहा हूं और उसके मुताबिक तकरीर करता जा रहा हूं। तो जो भी बात हम करते हैं पहले जहन में वो सोचते हैं और फिर जुबान के जरिए उसको अदा कर देते हैं, उस पर तलफ्फुज कर देते हैं। तो वो बात जो जहन में हो उसको कहते हैं कौले माकूल, वो अकल में है। और जब जुबान पर तलफ्फुज करते हैं उसका नाम क्या है? कौले मलफूज है। और याद रखो ये जो मंतिकी है इसकी असल तवज्जो कौले माकूल की तरफ होती है। हमारे जहन में जो जो बातें आ सकती हैं उनके नाम उसने रख दिए। किसी का नाम तसव्वुर रखा, किसी का नाम तस्दीक रखा, किसी का नाम जुजी रखा, किसी का नाम कुल्ली रखा, किसी का नाम जिंस रखा, किसी का नाम फसल रखा। ये सारी चीजें जो जहन में आ रही हैं उनके नाम वो रखता है। लेकिन अल्फाज को भी यही कह देते हैं, अल्फाज पर भी ये चीजें बोल दे। जैसे कहते हैं जैद क्या है? जुजी है। इंसान क्या है? कुल्ली है। तो लफ्ज को भी कुल्ली जुजी कह देते हैं लेकिन हकीकत में आप पढ़ चुके कि कुल्ली जुजी क्या है? मफहूम का नाम है। तवज्जो है, कुल्ली और जुजी किसका नाम है? मफहूम। तो मंतिकी की असल तवज्जो कौले माकूल की तरफ होती है। जो जो बातें जहन में आती हैं वो कभी वो तसव्वुर होगा, कभी तस्दीक होगा, कभी मुफरद होगा, कभी मुरक्कब होगा, कभी जुजी होगा, कभी कुल्ली होगा, कभी मुआरिफ होगा, कभी हुज्जत होगी, तस्दीक होगी वगैरह। बात समझ में आ रही है? तो मंतिकी की असल तवज्जो किसकी तरफ? कौले माकूल, जो जो बातें जहन में आती हैं। लेकिन चूंकि एक दूसरे को समझाने के लिए अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है, जैसे आपको समझाने के लिए मुझे लंबी तकरीर करना पड़ रही है, तो दूसरे को समझाने के लिए चूंकि अल्फाज का सहारा लेते हैं इसलिए ये जो अल्फाज हैं इनके बारे में भी फिर वो बहस करते हैं। जैसे कहते हैं जैद क्या है? जुजी। इंसान क्या है? कुल्ली। तो लफ्जों के बारे में बहस कर रहे हैं हालांकि असल तवज्जो उसकी किसकी तरफ है? कौले माकूल की तरफ असल तवज्जो है। लेकिन चूंकि एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है लिहाजा वो अल्फाज की भी बहस करता है, आपको बताता है मुफरत किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं और दलालत किसे कहते हैं, दलालत लफ्जिया कौन सी है, दलालत गैर लफ्जिया कौन सी है, मुख्तलिफ किस्में फिर वो आपको बताता है क्योंकि लफ्जों का सहारा लेना पड़ता है एक दूसरे को समझाने के लिए। तो लिहाजा गोया कौल दो किस्म का हुआ, एक कौल मलफूज और एक कौल माकूल। और मंतिकी की असल तवज्जो किसकी तरफ? कौल माकूल की तरफ। तो इन्होंने तारीफ की अल कजियतु कौलुन यहतमिलु सिद्क वल किज़्ब। ये शरह में आगे एतराज आएगा, बस वहां फिर आसानी से आपको लंबी तकरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं समझ लें कि कजिया ऐसा कौल है। देखो कौल नकेरा आया और नकेरा के बाद फेल आया, नकिरा के बाद फेल आए तो उसके लिए क्या बनता है? सिफत। कजिया ऐसा कौल है यह तमिल सिद्क वल किज़्बा, जो सिद्क और किज़्ब का एहतमाल रखता हो। भाई तो कौल का लफ्ज लाए और कौल तो अरबी जुबान में किसको कहते हैं? लफ्ज को कहते हैं। तो शुबा होता है कि ये तो आपने कजिया मलफूजा की बात कर दी, कजिया माकूला की भी तो बात करें। इतराज समझ में आया? तो आपको जवाब देंगे कि हां अरबी जुबान में तो कौल लफ्ज का नाम है लेकिन इस इलम की इस्तेलाह में कौल मुरक्कब को कहते हैं। किसको? मुरक्कब। कौल किसे कहते हैं? मुरक्कब को कहते हैं। और वो मुरक्कब फिर चाहे वो मुरक्कब मलफूज हो या मुरक्कब माकूल हो, सब उसके अंदर दाखिल हैं। तो इस इलम की इस्तेलाह है वो कौल का लफ्ज। इस इलम में कौल किसके लिए है? लफ्ज के लिए नहीं। कौल का लफ्ज किसके लिए नहीं बोला जाता? लफ्ज के लिए नहीं बोला जाता बल्कि मुरक्कब के लिए बोला जाता है, यानी इस इलम की इस्तेला है। लिहाजा जब कौल कह दिया तो इसमें सब मुरक्कबात आ गए। फिर वो मुरक्कब दो किस्म पर है, कभी वो मलफूज होता है जब हम जुबान से बोलते हैं और कभी वो माकूल होता है जब वो किस में है? जहन में है और अकल में है। तो जब कौल कहा तो सारे मुरक्कब आ गए और मुरक्कब आए तो मलफूज भी आ गए और माकूल भी इसमें आ गए। लिहाजा आप ये एतराज नहीं कर सकते कि भाई मंतिकी तो कौल माकूल के बारे में बात करता है और आपने तो यहां लफ्ज की बहस शुरू कर दी। जवाब समझ में आया? अच्छा, शरा में और बेहतर अंदाज में इसको जिक्र कर देंगे भी। तो कहते हैं अल कजियतु कौलुन यहतमिलु सिद्क वल किज़्ब। कजिया ऐसा कौल है जो एहतमाल रखता हो सिद्क और किज़्ब का। भाई दोनों एहतमाल होने चाहिए, एक नहीं, एक नहीं, सिद्क का भी एहतमाल हो और किज़्ब का भी एहतमाल हो। वाओ आया, वाओ। अस्सिदका आओ आओ नहीं है, सिद्दक या किजब का एहतेमाल रखता हो, यह नहीं कहा बल्कि सिद्दक और किजब, सिद्दक और किजब दोनों का एहतेमाल रखता हो, तो इस पर एतराज होता है कि भाई बाज बातें उनमें तो सिद्दक ही सिद्दक होता है, किजब होता ही नहीं। जैसे अल्लाहु अहदुन, अल्लाहु वाहिदुन या अल्लाहु अहद को, वाहिद के बाद इसनैन आता है लेकिन अहद का माना ऐसा एक जिसके बाद कोई दूसरा ना, तो अल्लाहु अहद अल्लाह यकता है, इसमें किजब का एहतेमाल है नहीं, किजब का तो इसमें एहतेमाल ही नहीं है, ये तो सिद्दक ही सिद्दक है, तो ये तो कजिया में दाखिल नहीं। हालांकि ये भी क्या है, बिल इतफाक ये भी कजिया, क्योंकि आज आपने तो क्या कहा, कजिया किसे कहते हैं जिसमें सिद्दक और किजब का एहतेमाल हो, मालूम है दोनों का एहतेमाल होना चाहिए वहां, तो यहां तो सिद्दक ही सिद्दक है किजब नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला कोई बात फरमाए जैसे कुरान की, कोई एक मिसाल ले लो, कोई मिसाल ले लो, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह क्या है क्यामत के दिन के मालिक हैं, ये अल्लाह का कौल है, अब यहां किजब का एहतेमाल है नहीं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक बात ले आए, जैसे हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अद्दीन नसीहा, दीन खैरख्वाही ही का नाम है, तो ये तो हुजूर अलैहि सलाम का कौल है, यहां तो किजब का कोई एहतेमाल नहीं है। या वैसे वैसे दलाइल खारजिया को देख लो, अल्लाह के कलाम को या हुजूर के कलाम के अलावा और कोई दलील देख लो, मसलन एक शख्स कहता है अल अर्ज़ तहता ना, जमीन हमारे नीचे है, और वाकई जमीन हमारे नीचे है, तो बाज बातें ऐसी हैं कि उसमें कहने वाले की तरफ देखा जाए तो उसमें किजब का इहतमाल ही नहीं, और बाज बातें ऐसी हैं उनमें दलाइल खारिजिया को देखा जाए तो वहां किजब का इहतमाल ही नहीं। मतलब अल्लाह का कलाम आ गया तो उसमें किजब का एहतेमाल ही नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन का कलाम आ गया तो उसमें किजब का एहतेमाल ही नहीं, और बाज़ औक़ात दलाइल खारजिया बतला देते हैं कि एक चीज सच है उसमें झूठ का एहतेमाल नहीं। जैसे एक आदमी क्या कहता है, जमीन हमारे नीचे है, हम भी देखते हैं जमीन क्या है हमारे नीचे है, इसमें किजब का कोई एहतेमाल नहीं, तो आपकी तारीफ तो इन पर सादिक नहीं आ रही, आपने तो क्या कहा कजिया ऐसा कौल जो सिदक और किजब का एहतेमाल रखता हो। इसी तरह बास बातें ऐसी होती हैं कि वहां किजब ही किजब होता है, वहां सिदक का कोई एहतेमाल ही नहीं। जैसे कोई कहने वाला कहे दो और दो पांच होते हैं, दो और दो पांच होते हैं, यहां सिदक का एहतेमाल है नहीं, ये किजब ही किजब है, दो और दो तो चार होते हैं। या इसी तरह कोई कहता है अल अर्ज़ फौकना, जमीन हमारे ऊपर है, देखो ये किजब ही किजब है, इसमें कोई सच नहीं। तो बास बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सच होती हैं, वहां झूठ का इहतमाल ही नहीं होता, और बास बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ झूठ होता है, वहां सिदक का कोई इहतमाल नहीं, तो आपकी तारीफ उनको शामिल नहीं, क्योंकि आपने तो हमें क्या बताया कि कजिया किसे कहते हैं जिसमें सिदक और किजब दोनों का एहतेमाल हो। बात समझ में आ गई। बाजों ने फिर ये जवाब दिया कि ये वाव बमाने औ के है भाई, ये वाव बमाने कि उसमें सिदक या किजब का एहतेमाल हो, लेकिन ये जवाब उलमा ने पसंद नहीं किया कि नहीं ये वाव बमाने औ के नहीं है। तो फिर दूसरा जवाब देते हैं कि यहां कतई नजर दलाइल खारिजिया के, कतई नजर दलाइले खारजिया के उसमें इन सब में सिदक और किजब का एहतेमाल है। जैसे अल्लाहु अहद वाकई में तो अल्लाह यकता है, लेकिन कतई नजर दलील खारजी के, कतई नजर दलील खारजी के कतई नजर सिर्फ इस कौल पे नजर करो तो इसमें सिदक का भी एहतेमाल, और जबी तो कुफार इनकार करते हैं या नहीं करते, सिदक और किजब का एहतेमाल है तो वो इनकार करते हैं ना, तो कतई नजर दर। या अल्लाहु अहद, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद, तो अल्लाहु अहद अगर अल्लाह के कलाम हो या इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम का कलाम हो वो है तो सच, उसमें झूठ का कोई इहतमाल नहीं। लेकिन कतई नजर कायल के, कहने वाला कौन है, उससे कतई नजर सिर्फ उस जुमले पर नजर की जाए तो उसमें दोनों इहतमाल हैं, इसीलिए तो कुफार क्या करते हैं, उसका इनकार करते हैं। तो क्या जवाब, कतई नजर दलाइल खारिजिया से, या यूं कहें कतई नजर काइल के, कहने वाले के, कतई नजर दलाइल खारिजिया से हर कजिए के अंदर सिदक का भी एहतमाल और किजब। हां, जब दलाइल खारिजिया को आप देखेंगे तो फिर एक जानब मुतायन हो जाएगी, या उसमें सिर्फ सिदक ही सिदक होगा या सिर्फ किजब होगा। लेकिन कतई नजर दलाइल खारिजिया से वहां दोनों एहतमाल हैं भाई, दोनों एहतमाल हैं। ये यूं कहें, कतई नजर वो खास मौजू और महमूल के, कतई नजर जैसे एक शख्स ने कहा अल अर्जु फौकाना, जमीन हमारे ऊपर है। अब इसमें यह किजब ही किजब है, इसमें सिदक का एहतमाल, हालांकि आपने तो क्या कहा दोनों एहतमाल होने चाहिए, सिदक का भी और एहतमाल की बात हो रही है, तो सच, लेकिन एहतमाल दोनों होने चाहिए, सिदक का भी और किजब का, दोनों एहतमाल होने चाहिए, यहां तो सिदक का एहतमाल ही नहीं है। तो कहते हैं भाई कतई नजर इस मौजू और इस महमूल के, इस मौजू भाई कजिया, देखो याद रखो जुमला खबरिया को कहते हैं, और आप जानते हैं जुमला खबरिया में एक होता है मुब्तदा और एक होती है खबर, या जुमला फेलिया हो तो एक होता है फेल और एक होता है फाइल, या आसान लफ्जों में कहो एक होता है मुस्नद इले और एक होता है मुस्नद। तो जैदुन कायमुन, जैद क्या है मुब्तदा, और कायमुन क्या है उसकी खबर है, कायमुन उसकी खबर है। तो ये जो मुब्तदा है इसको मंतिक में कहते हैं मौजूअ, मौजूअन, ये आगे चलकर आपको बताएंगे भी, और जो खबर है इसको वो महमूल कहते हैं। तो जैदुन कायमुन, जैदुन क्या है मौजूअ, और कायमुन ये क्या है महमूल है, महमूल है। तो कहते हैं कि जो बाज जुमले आपने जिक्र किए, बाजों में सिर्फ सिदक ही सिदक है, किजब का एहतमाल नहीं, बाजों में किजब ही किजब है, सिदक का कोई एहतमाल नहीं। कहते हैं ये वो खास तौर पर वो मौजू और महमूल के एतबार से है, खास तौर पर, तवज्जो से समझ लें। जैसे अल अर्जु फौकाना, अल अर्जु फौकाना, अल अर्जु फौकाना, ये मौजू क्या अल अर्ज, और महमूल क्या फौकाना। जब भी आप अल अर्ज मौजू लाएंगे और महमूल फौकाना लाएंगे तो फिर तो किजब ही किजब है। वैसे कतई नजर इस खास मौजू और खास महमूल के, उसमें सिदक और किजब का एहतमाल, कतई नजर किससे, इस खास मौजू और खास महमूल से कतई नजर। यानी यूं कहो अल अर्जु फौकाना, अल अर्जु ये क्या है किजब ही किजब है, सच का एहतमाल नहीं है, लेकिन आप कतई नजर इस मौजू को और कतई नजर इस महमूल के, इसमें दोनों एहतमाल हैं। भाई क्या माना दोनों से कतई नजर, माना यह है यूं कहो ये वाला जो मौजू है इसके लिए यह महमूल साबित है, अल अर्जु फौकाना, अर्ज के लफ्ज को छोड़ दें, यह वाला जो मौजू है फौकाना इसके लिए यह वाला महमूल साबित है। तवज्जो है, आप जब भी कहेंगे इस मौजू के लिए यह वाला महमूल साबित है, उसमें दोनों इस्तेमाल होंगे, हो सकता है साबित हो सकता है साबित ना हो, लिहाजा उसमें सिदक का भी इस्तेमाल और नई बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, खास मौजू और महमूल के एतबार से उसमें किजब था, अल अर्जु फौकाना इसमें क्या है किजब ही किजब है, सिदक का कोई एहतमाल नहीं। मैंने बतलाया कि मुराद यह है कि नफ्स से मफहूम की तरफ नजर करें, किसकी तरफ, नफ्स से मफहूम जो है इनका, यानी ये वाला जो मौजू है इसके लिए ये वाला महमूल साबित है, खास मौजू और खास महमूल लाएंगे तो फिर या तो सिर्फ सिदक आ जाएगा या सिर्फ किजब हो सकता है। जैसे मौजू यही ले आओ अल अर्जु, महमूल जरा बदल दो अल अर्जु तहताना, जी बदल गया या नहीं, लेकिन वही मौजू लाओ वही महमूल लाओ फिर तो सिर्फ किजब है, फिर वहां सिदक का एहतमाल नहीं। या अल अर्ज मौजू वो ला ले आओ महमूल सिर्फ बदल दो अल अर्जु तहताना, देखा वो खास मौजू और महमूल थे तो वहां सिर्फ किजब का एहतमाल था, ये वाले खास मौजू और महमूल आ गए तो अब सिर्फ किसका एहतमाल, सिदक का एहतमाल है। तो खास मौजू और खास महमूल से कतई नजर, भाई वो कतई नजर कैसे होगा मैंने बयान कर दिया, कैसे होगा अल अर्ज, हां अल अर्ज की जगह अल अर्ज को छोड़ दो, ये वाला जो मौजू है जो भी हो ये यह वाला जो मौजू है आगे क्या था, फौकाना, इस फौक को छोड़ दो, यह वाला जो महमूल है इस मौजू के लिए यह वाला महमूल साबित है। जब भी आप यूं कहेंगे वहां सिदक का भी इहतेमाल होगा और किजब। हां, जब आप मौजू खास ले आए, महमूल साथ ले आए, सिर्फ एक को भी बदलेंगे सूरत ही बदल जाएगी। आप अल अर्ज को मौजू ले आए और फौकाना को क्या ले आए, महमूल, खास मौजू, खास महमूल जब आया, अब इसमें सिदक का इहतेमाल ही नहीं, सिर्फ क्या रह गया, किजबी किजब, या महमूल को जरा बदलें, मौजू यही रखें। देखो खास मौजू वही है लेकिन महमूल बदला, अल अर्ज तहताना, यही किससे बदल गया, सिदक से बदल गया। तो ये जो बाज़ औक़ात सिर्फ सिदक होता है या बाज़ औक़ात सिर्फ क्या होता है, किजब होता है, वो उस खास मौजू और खास महमूल की वजह से होता है। तो मुराद यह है कतए नजर किससे, उस खास मौजू और खास महमूल से, उस कलाम के अंदर सिदक का भी इहतेमाल है और यानी यूं कहा जाए इस मौजू के लिए यह वाला महमूल साबित है तो वहां सिदक का भी इहतेमाल और किजब का भी। खास मौजू और खास महमूल की सूरत में सिदक और किजब दोनों का इहतेमाल नहीं रहता। हां, अगर कतई नजर वो खास मौजू और खास महमूल के सिर्फ यूं कहा जाए इस मौजू के लिए यह वाला महमूल साबित है तो फिर वहां वहां सिदक का भी इहतेमाल और किजब का भी इहतेमाल होता है। आसान लफ्जों में यूं कहो कि जब भी किसी मौजू के लिए किसी महमूल को साबित किया जाए, तवज्जो है, आसान लफ्जों में यूं कहो, जब भी किसी महमूल के लिए किसी मौजू को साबित किया जाए और यूं कहा जाए कि इस मौजू के लिए यह वाला महमूल साबित है तो वहां दोनों इहतेमाल होते हैं। हो सकता है ये वाकई में भी इसके लिए महमूल साबित हो और हो सकता है वाकई में उसके लिए महमूल साबित ना हो। अगर वाकई में उसके लिए वो महमूल साबित है तो वो सिदक हुआ और वाकई में उसके लिए वो महमूल साबित नहीं तो वो किजब हुआ। बात समझ में आ रही। जब भी किसी मौजू के लिए किसी महमूल को साबित किया जाए और यूं कहा जाए इस मौजू के लिए ये वाला महमूल साबित है तो वहां दोनों इहतेमाल होते हैं भाई। कतई नजर दलाइल खारजिया से, हो सकता है वाकई में साबित हो सकता है साबित ना हो, अगर होगा तो वो सिदक, ना होगा तो वो किजब, तो वहां दोनों इहतेमाल होते हैं। जब भी किसी मौजू के लिए किसी महमूल को साबित किया जाए और यूं कहा जाए कि इस मौजू के लिए यह वाला महमूल साबित है तो वहां दोनों इहतेमाल होते हैं। हो सकता है वाकई में उसके लिए वो महमूल साबित हो सकता है वाकई में उसके लिए वो महमूल साबित ना हो। तो यह माना है कि कतई नजर उनके खास मौजू और खास महमूल के वहां सिदक और किजब दोनों का इहतेमाल होता है। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। या दूसरे लफ्जों में यूं कहो कतई नजर दलाइल खारजिया के, दलाइल खारजिया से कतई नजर कि इस कॉल को कहने वाला कौन है या वाकई के अंदर ऐसा है या ऐसा नहीं, उन चीजों को छोड़ दो, फिर कोई भी कॉल ले लो जो भी निस्बत खबरी होगी उसमें सिदक का भी इहतेमाल होगा और किजब का भी। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। तो कहते हैं अल कजियतु कौलुन यहतमिलु सिदक वल किजबा, कजिया ऐसा कौल है जो सिदक और किजब का इहतेमाल रखता है। फइन कान अल हुक्म फीहा बिसुबूति शैइन लिशैइन औ नफ्यिही अन्हु फहमलियतुन। अब कजिया की तकसीम करेंगे, आपको बतलाएंगे कजिया दो किस्म पर है, या कजिया हमलिया होगा या शर्तिया होगा। तवज्जो है, ये सारी तकसीम आपने खूब तवज्जो से समझनी है, फिर आगे चलकर आपको हुज्जत सही समझ में आएगी। कजिया दो किस्म पर है, या हमलिया होगा या शर्तिया होगा, हमलिया या शर्तिया। और ये जो हमलिया है इसमें एक चीज का सबूत दूसरी के लिए होता है या एक चीज की नफी दूसरी चीज से होती है। जैद उन कायम उन, जैद के लिए क्या साबित किया, कियाम, और जैद उन लैसा बिकायमीन, इसमें जैद से कियाम की नफी की, तो ये कजिया हमलिया है। जैद उन कायम उन, ये भी कजिया हमलिया, जैद उन लैसा बिकायमीन, ये भी क्या है, कजिया हमलिया। कजिया हमलिया किसे कहते हैं, जिसमें एक चीज के लिए दूसरी चीज का सबूत हो या नफी हो। तो वह जो है कजिया हमलिया किसे कहते हैं, जिसमें एक चीज के लिए दूसरी चीज का सबूत हो या नफी हो। जैद उन जारिबुन, इसमें जैद के लिए जारिब होने का सबूत, और जैद उन लैस बिजारिबिन, इसमें जैद से जारिब होने की नफी है। तो अगर इस बात हो उसको मुजीबा कहते हैं, ईजाब का माना है इस बात, इस बात। तो जैद उन कायमुन, ये कौन सा कजिया हुआ, कजिया हमलिया मुजीबा, इसमें ईजाब है, जैद के लिए कयाम का इस बात है। और बाज़ औक़ात नफी होती है, ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन, इसको कहते हैं सालिबा। सल्ब का माना है नफी, नफी। तो मुजिबा का क्या माना जिसमें क्या हो ईजाब, और सालिबा का क्या माना जिसमें नफी हो। ज़ैदुन क़ाइमुन मुजिबा है, सालिबा मुजिबा। ज़ैदुन ज़ारिबुन मुजिबा। ज़ैदुन आकिलुन, ज़ैदुन शारिबुन मुजिबा। और ज़ैदुन लैसा बिक़ाइमिन, ज़ैदुन लैसा बिज़ारिबिन, ज़ैदुन लैसा बिशारिबिन, ये सब क्या है सालिबा। तो क़ज़िया हमलिया किसे कहते हैं, जिसमें एक चीज का सबूत हो दूसरी चीज के लिए या उससे दूसरी चीज की नफी हो, और इसमें ईजाब हो तो उसको क्या कहेंगे मुजिबा, और नफी हो तो सालिबा कहेंगे। बात समझ में आ गई। देखिए भाई किताब पर कहते हैं फइन कान अल हुक्म फीहा बिसुबूती शैइन लिशैइन, अगर इसमें हुक्म हो, फइन कान अल हुक्म फीहा, अगर इस कजिए के अंदर हुक्म हो बिसुबूती शैइन लिशैइन, एक चीज का दूसरी चीज के लिए सबूत का, औ नफी ही अनहु, या नफी हो एक चीज की अनहु किससे दूसरी चीज से, फहमलियतुन, तो ये क्या है कजिया है हमलिया है। मुजिबतुन औ सालिबतुन, ये मुजिबा होगा या सालिबा होगा। वयुसम्मल महकूमु अलैहि मौजूअन वल महकूमु बिही महमूलन वद्दालु अलन निस्बति राबिततन। भाई कजिए के अंदर एक मुस्नद इलैह होगा और एक मुस्नद। जैदुन कायमुन, जैदुन, जैद क्या है मुबतदा, मुबतदा क्या होता है मुस्नद इलैह, यानी इसकी तरफ इसनाद किया गया है, यूं कहे इस पर हुक्म लगाया गया है। जैदुन कायमुन, मैंने जैद पर कियाम का हुक्म लगाया है। देखो आम जुबान में कहेंगे मैंने जैद के बारे में बात की, जैदुन कायमुन, मैंने किसके बारे में बात की जैद के बारे में, और इल्मी अंदाज में कहेंगे मैंने जैद पर हुक्म लगाया, या कहेंगे मैंने जैद की तरफ इसनाद किया। हुक्म लगाने का क्या माना बात करना, क्या माना बात करना। तो जैदुन कायमुन किसके बारे में बात की जैद के बारे में, ये यूं कहें किस पर हुक्म लगाया जैद पर, तो जैद वो है जिसके बारे में बात की, या इल्मी अंदाज में कहो जैद वो है जिस पर हुक्म लगाया, तो जिस पर हुक्म लगाया वो है महकूमुन अलैहि। महकूम, देखो लफ्जों पर गौर कर लो, महकूमुन हुक्म लगाया गया है, अलैहि इस पर, महकूमुन अलैहि वो चीज जिस पर क्या किया गया है हुक्म लगाया, तो जैद क्या हुआ महकूमुन अलैहि, और क्या हुक्म लगाया कायमुन का, तो कायमुन हुआ महकूमुन बिही, जिस पर हुक्म लगाया जाए उसको क्या कहते हैं महकूमुन अलैहि, और जो हुक्म लगाया जाए उसको क्या कहते हैं महकूमुन बिही। तो ये जो महकूमुन अलैहि होता है नह में इसको कहते हैं मुबतदा। जैदुन कायमुन, जैद क्या है मुबतदा और कायमुन क्या है उसकी खबर, लेकिन इल्म मंतिक में महकूमुन अलैह यानी मुबतदा जो है उसको मौजूअ कहते हैं, क्या कहते हैं मौजूअ, और जो खबर है उसको इल्म मंतिक में महमूल कहते हैं, यानी महकूमुन बिही को क्या कहते हैं महमूल। फिर दोहराए जैदुन कायमुन, जैद क्या है महकूमुन अलैह और कायमुन क्या है महकूमुन बिही, इल्म नह में कैसे कहेंगे जैद क्या है मुबतदा और कायमुन क्या है खबर, और इल्म मंतिक में क्या कहेंगे जैद क्या है मौजूउन, मौजूउ है और कायमुन क्या है महमूल है। माना भी समझ लें, ये खुद भी बयान करेंगे। मौजूउ, मौजूउ वज़ा से है, वज़ा का माना है मुकर्रर करना, मुतायन करना। देखो जैदुन कायमुन, मैंने कायमुन का हुक्म लगाना है तो उसके लिए एक किसी को मैं मुतायन करूंगा, किस पर हुक्म लगाना है तो उसको मैं पहले लाऊंगा जैदुन, यह है मौजू, यानी देखो इसको मुतायन किया गया है किसके लिए हुक्म लगाने के लिए, तवज्जो है इसको क्या किया गया, यह हुक्म तो जैद पर भी लग सकता था, बकर पर भी खालिद पर भी, लेकिन मैंने किसको मुतायन किया जैद को, तो जैद हुआ मौजू, यानी इसको मुतायन किया गया है मुकर्रर किया गया है। बात समझ में आ गई। तो मौजू को मौजू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको मुकर्रर किया गया है मुतायन किया गया है किस चीज के लिए, आगे आने वाले हुक्म के लिए कि उस पर यह हुक्म लगाया जा रहा है। आपने कहा जैदुन कायमुन, आप खालिदुन कायमुन कह सकते थे या नहीं, आप बकरुन कायमुन कह सकते थे या नहीं, लेकिन आपने किसको मुतायन किया, जैद को, तो इसलिए इसको मौजू कहते हैं कि इसको मुतायन किया जाता है, इस पर फिर आगे हुक्म लगाया जाएगा, तो उस हुक्म के लिए इसको मुतायन किया जाता है। तो जैदुन क्या हुआ मौजू, और कायमुन क्या हुआ महमूल। महमूल को महमूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका हमल किया जाता है, क्या किया जाता है यानी इसका हुक्म लगाया जाता है, तवज्जो है, इसका क्या किया जाता है हुक्म लगाया जाता है। जैदुन कायमुन, जैद है मौजू, और क्या हुक्म लगाया कियाम का, किसका कियाम, तो इसको महमूल कहते हैं। महमूल का क्या माना, जिसका हमल किया गया है, क्या किया गया है हमल किया गया, क्या माना हमल किया गया है हुक्म लगाया गया है। पहले को कहते हैं महकूमुन अलैही, क्यों महकूमुन अलै कहते हैं, इस पर हुक्म लगाया गया है, और दूसरे को क्या कहते हैं महकूमुन बिही, यानी इसके जरिए क्या किया गया, इसके साथ हुक्म लगाया गया, तो इसी के लिए दूसरा लफ्ज क्या है महमूल, यानी इसका हमल किया गया है। हमल का क्या माना हुक्म लगाया गया है उस पर, जैद पर कयाम का, जैदुन कायमुन, जैद को कहते हैं मौजू और कायमुन को क्या कहते हैं महमूल। जैद को मौजू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको मुतायन किया गया, इस पर हुक्म लगाना है, और कायमुन को क्या कहते हैं महमूल। महमूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका हमल किया गया है, क्या किया गया है हमल, क्या माना हमल किया गया है हुक्म लगाया गया है उस पर। बात समझ में आ गई, तो कहते हैं वह युसम्मल महकूम अलैही मौजूअन, और महकूम अलैह जो है उसको मौजू कहते हैं। मैंने आपको बतलाया था सम्मा युसम्मी तस्मियतन, ये दो मफूल चाहता है, कितने
दो,
सम्मय तो रजुला, मैंने नाम रखा अर रजुला उस आदमी का जैदन, क्या नाम रखा जैद, तो दो मफूल चाहिए, सम्मयतु मैं हुआ फाइल, मैंने नाम रखा अर रजुला, ये मफूल अव्वल, और जैदन ये क्या है मफूल सान, तो ये सम्मा दो मफूल चाहता है, तो लिहाजा यहां आया यू सम्मा, फिर मजहूल आया, और फिर मजहूल में क्या करते हैं, हां वो जो मफूल होता है उसको क्या बनाते हैं नाइफाइल, तो सम्मयतु रजुला जैदन, इस सम्मयतु इसमें ता क्या है फाइल, समय तुम्हें ता क्या है फाइल है, इस फाइल को हजफ कर दो क्योंकि फेले मजहूल में फाइल को जिक्र नहीं किया जाता, तो सुमिया, और सुमिया फेले मजहूल आ गया, तो उसके लिए अब मफूल को क्या बना दो नाई फाइल, तो अर रजुल को नाई फाइल बना दो, उस पर रफा पढ़ दो सुमिया रजुलो, और जैदन मफूल था अभी भी क्या रहेगा मफूल, सुमिया रजुलो जैदन, यहां भी इसी तरह है यु सम्मल महकूम अलैही, यह महकूम अलैह क्या है, यह नाई फाइल है किसके लिए युसम्मा के लिए, और मौजूअन ये क्या है मफूल है। बात समझ में आ गई, तो कहते हैं वयुसम्मल महकूम अलैहि मौजूअन, और महकूम अलैह को मौजू कहते हैं, वल महकूम बिही महमूलन, और महकूम बिही को महमूल कहते हैं, व दाल अलन निस्बत राबिततन, और दाल अलन निस्बत को वो चीज जो निस्बत पर दलालत करे उसको राबिता कहते हैं, क्या कहते हैं राबिता कहते हैं। जैसे देखो उर्दू में मिसाल ले लो, जैद जारिब है, जैद जारिब है, जैद क्या बना मौजूर, और जारिब महमूल, तवज्जो है, और जब तक आखिर में मैं है नहीं लाऊंगा रबत नहीं आएगा, जैद जारिब जैद जारिब, आप सारा दिन करते रहें, साथी कहेंगे भाई क्या माना है जैद जारिब बताओ है या नहीं है, तो आप कहते हैं जैद जारिब है, ये है ने क्या कर दिया दोनों को रबत दे दिया, तो इसको राबिता कहते हैं, या रबत देने वाली चीज, इसको क्या कहते हैं राबिता तुन, रबत देने वाली चीज। याद रखो ये जो मौजू और महमूल होता है इनमें रबत होता है, आप हुक्म लगाते हैं किस पर लगाते हैं मौजू पर, तवज्जो है, तो उनमें रबत आ जाता है। जैद अलग लफ्ज था, कायमुन अलग लफ्ज था, आपने इन दोनों को लाकर जोड़ दिया और कायमुन का हमल कर दिया किस पर जैद पर, तो दोनों में रबत आ गया जोड़ आ गया, मालूम हुआ बात किसकी हो रही है जैद की, खालिद या बकर की नहीं हो रही, और क्या जैद के बारे में क्या बात हो रही है कि वो कायम है। ये कायम जैद के बारे में कह रहे हैं आप, खालिद या बकर के बारे में नहीं कह रहे। ये कायम तो जैद भी हो सकता है, बकर भी हो सकता है, खालिद भी हो सकता है, लेकिन आपने कायम उनको किससे जोड़ा? जैद से। तो इन दोनों में रबत आ गया, इनमें निस्बत आ गई, उस निस्बत हुक्मिया कहते हैं। इन दोनों में रबत और जोड़ आ गया। भाई एक को कहते हैं जैद है मुबतदा और कायमुन क्या है उसकी खबर है। तवज्जो है, जैद है मुबतदा और कायमुन है खबर। मुबतदा किसी लफ्ज को क्यों कहते हैं? वैसे ही कह देते हैं, जब उसके साथ कोई खबर आप जोड़ेंगे फिर ही मुबतदा किसी चीज को कहेंगे। जब तक खबर नहीं जोड़ेंगे, जैद का लफ्ज अकेला है, कोई इसको मुबतदा कहेगा नहीं। लेकिन इसी को जब मैंने कायमुन के साथ ये जैद को जोड़ दिया, अब आप इसको क्या कहते हैं? मुबतदा। इसी तरह कायमुन अकेला लफ्ज है, कोई आपसे पूछे ये क्या लफ्ज है, आप कहेंगे इसमें फाइल है। कोई कहेगा कभी कि ये खबर है जी? खबर कब कहेंगे? जब आप इसको मुबतदा से लाकर जोड़ देंगे। तो ये जब दोनों को जोड़ते हैं दरमियान में रबत आ जाता है। उस वो जो रबत बीच में आया वो उसको कहते हैं निस्बत खबरिया। क्या कहते हैं? खबर है ना जी। ये मुबतदा खबर, ये जुमला खबरिया है ना, जुमला खबरिया को भी खबर कहते हैं। ये क्या है? खबर। और दूसरी किस्म हो तो वो है इंशा, कसम वगैरह और निदा वो क्या है? इंशा है। तो जुमला खबरिया को खबर कहते हैं, ये खबर है, और दूसरे को क्या कहते हैं? ये इंशा है। तो ये जो जुमला खबरिया है इसके अंदर ये जो मुबतदा और खबर होते हैं इनके दरमियान जोड़ आता है, एक रबत आता है। जोड़ और रबत है तो ये मुबतदा और खबर कहला रहे हैं। अगर ये रबत और जोड़ नहीं तो फिर ये मुबतदा और खबर भी नहीं, वरना तो दोनों लफ्ज हैं। जैद भी एक लफ्ज है, कायमुन भी एक लफ्ज है, अलग अलग हैं तो कोई इनको मुबतदा खबर नहीं कहता। लेकिन जब आपने दोनों को जोड़ दिया, अब एक को लोग क्या कह रहे हैं? मुबतदा। दूसरे को क्या कह रहे हैं? खबर। वैसे ही कह रहे हैं, यह दोनों में जोड़ आया, जोड़ और रबत। ये जो बीच में जोड़ और रबत आया इसको कहते हैं निस्बत खबरिया। क्या कहते हैं? यूं कहें निस्बत हुक्मिया। निस्बत खबरिया भी कहते हैं और निस्बत हुक्मिया भी। जैसे एक मर्द है एक औरत, जब इस मर्द का इस औरत से निकाह होगा तो इस मर्द को कहेंगे खावंद और औरत को क्या कहेंगे? बीवी। निकाह नहीं तो इस मर्द को कोई खावंद कहेगा नहीं, इस औरत को कोई बीवी कहेगा नहीं। तो उन दोनों दरमियान जैसे निकाह होता है उनमें एक रबत आता है, एक जोड़ आ जाता है, और वो रबत क्या है दोनों में? निकाह। निकाह है तो वो मर्द खावंद है और वो औरत क्या है? बीवी है। इसी तरह मुबतदा और खबर में जोड़ है तो मुबतदा मुबतदा है और खबर खबर। अगर जोड़ नहीं तो फिर इनमें रबत भी नहीं है और वह जोड़ क्या है? निस्बत हुक्मिया है। तो इन दोनों में क्या आया? रबत। रबत है तो इनको मुबतदा और खबर कहेंगे, रबत नहीं तो मुबतदा और खबर भी नहीं। यूं कहें रबत है तो ये मौजू और महमूल है, रबत नहीं तो ये मौजू और महमूल भी नहीं। इसी तरह जैसे मैंने मिसाल जिक्र कर दी, मियां बीवी, निकाह है तो मियां बीवी कहलाएंगे, निकाह नहीं तो मियां बीवी भी नहीं। तो ये जो दरमियान में रबत है, ये जोड़ है, इसका क्या नाम है? निस्बत खबरिया। यूं कहो निस्बत हुक्मिया, दोनों इसी के नाम है। एक नाम क्या? निस्बत खबरिया, या एक क्या? निस्बत हुक्मिया। निस्बत हुक्मिया, तो ये जो निस्बत हुक्मिया पर जो चीज दलालत करे उसको राबिता कहते हैं। जो चीज निस्बत हुक्मिया पर दलालत करे उसको क्या कहते हैं? राबिता। जैसे मैंने उर्दू में मिसाल दी, जैद जारिब है, जैद जारिब है, यह है, ये बतला रहा है कि इन दोनों में जोड़ है, रबत है। सिर्फ जैद जारिब कहो उर्दू में तो इससे पता नहीं चलेगा कि बात पूरी है। हां, जब आखिर में है आ गया या आखिर में था आ गया, जैद जारिब था, तो इस था ने या है ने बतला दिया कि दोनों में क्या है? रबत है। तो ये है और ये था वगैरह ये उस निस्बत पर दलालत करते हैं। तवज्जो है, तो वो चीज जो इस निस्बत पर दलालत करे उसको राबिता कहते हैं। ये माना है वद्दालु अलन निस्बति राबिततन, और वो चीज जो दलालत करती है निस्बत पर राबिततन उसका नाम क्या है? राबिता है। ये सब उसी युसम्मा पर के लिए नाइफाइल और मफूल बन रहे हैं। व युसम्मल महकूमु अलैही मौजूअन, व युसम्मल महकूमु बिही महमूलन, व युसम्मद्दालु अलन निस्बति राबिततन। इबारत समझ में आ रही है? तो ये सब का उसी पर आतफ है भाई। वकद उस्तुईरा लहा हुआ, और उसके लिए तहकीक मुस्तार लिया गया है हुआ को। इस राबिता के लिए मुस्तार लिया गया है किसको? हुआ। याद रखो इस्तार यस्तईरु के माने हैं आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए कोई चीज लेना। जैसे घरों में मेहमान आ जाता है तो वो साथ हमसायों से बर्तन ले लेते हैं कि हमें बर्तन दे दें, इस्तेमाल के बाद वापस कर देंगे। यह है आरियत। इसको क्या कहते हैं? आरियत। और ये आरियतन कोई चीज मांगना, इसको कहते हैं इस्तेआरा। सीन तलब के लिए आ गया ना, आरियत को तलब करना। इस्तेआरा का क्या माना? किसी चीज को इस्तेमाल के लिए तलब करना। तो यहां पर भी हुआ के लफ्ज को आरियतन ले लिया गया किसके लिए? उस राबिता के लिए। किसके लिए? राबिता के लिए। ये शरा में आपको बताएंगे भाई कि जो निस्बत हुक्मिया है ये गैर मुस्तकिल है। तवज्जो है, ये निस्बत हुक्मिया ये गैर मुस्तकिल है, लिहाजा जो लफ्ज इस पर दलालत करे वो भी अदात होगा। आपने शुरू किताब में पढ़ा था अदात, याद आया कि भूल गए? आपको इन्होंने बताया था कि लफ्ज मौजू दो किस्म पर है, या मुफरद होगा या मुरक्कब। मुफरद अगर वो मुस्तकिलन अपने माना पर खुद यानी दलालत कर रहा है और तीन जमानों में से कोई जमाना भी उसके साथ मिला हुआ नहीं है तो वो इसम है, और अगर जमाना मिला हुआ है तो वो फेल है, और अगर वो मुस्तकिलन अपने माना पर दलालत नहीं करता तो वो अदात है। यानी वही जो नह में आपने क्या पढ़ा था, इसम फेल और हर्फ। इसम किसे कहते हैं? जो अपने माना पर मुस्तकिलन दलालत करे और तीन जमानों में से कोई जमाना उसके साथ मिला हुआ ना हो। फेल किसे कहते हैं? जो अपने माना पर मुस्तकिलन दलालत करे और तीन जमानों में से कोई जमाना उसके साथ मिला हुआ हो। और हर्फ वो है जो अपने माना पर मुस्तकिलन दलालत ना करे। तो देखो ये जो इसम है ये मुस्तकिलन अपने माना पर दलालत करता है। मुस्तकिलन दलालत करने का माना यह है कि ये किसी और कलीमे का मोहताज नहीं। जैसे मैं एक लफ्ज बोलूंगा वो इसम होगा, आपने मुझे उसका माना बताना है। इब्तिदा, इब्तिदा का क्या माना? देखा मैंने सिर्फ एक लफ्ज इसम बोला, आपको उसका माना समझ में आ गया कि इब्तिदा का क्या माना है? शुरू करना, शुरू करना। अब मैं एक फेल बोलूंगा, आपने मुझे उसका माना बताना है। ज़राबा, मारा उसने जमानाए माजी। देखो ज़राबा सिर्फ फेल मैंने बोला, आपको उसका माना समझ में आ गया, किसी और कलिमे के साथ जुड़ने का वो मोहताज नहीं। इसी तरह इब्तिदा का लफ्ज बोला, उससे आपको इसम का माना समझ में आ गया, किसी और कलिमे के साथ जुड़ने का वो मोहताज नहीं। ये इसी तरह मीन, मीन हर्फ है, मीन हर्फ है, और इस मीन का माना है इब्तिदा। लेकिन मैं अकेला मीन बोलता हूं, क्या आपको किसी को इब्तिदा का माना समझ में आता है इससे? नहीं। तो मीन भी इब्तिदा पर दलालत कर रहा है लेकिन यह मुस्तकिलन दलालत नहीं करता, यानी अकेला उस माना पर दलालत नहीं करता, यह मोहताज है। इसके साथ और कलिमे जोड़ोगे तो फिर यह अपने माना पर दलालत करेगा। जैसे मसलन मैं आपसे कहता हूं सिर तु मीनल मीनल बैती इलल मस्जिदी। सारा या सीरू का माना होता है चलना, सीन के साथ है। सिर तु मैं चला, मीनल मीनल बैती कहां से? कमरे से या घर से। इलल मस्जिदी कहां तक? मस्जिद तक। देखा अब बताइए ये चलने की इब्तिदा कहां से हो रही है? घर से। भाई मैंने तो कोई इब्तिदा का जिक्र नहीं किया, कैसे पता चला? आप कहेंगे आपने जिक्र किया है, मीन कहा है आपने। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ मीन का क्या माना है? इब्तिदा। लेकिन क्या अकेले मीन से माना समझ में आ रहा था इब्तिदा वाला? नहीं। लेकिन जब इसके साथ चलने का जिक्र हुआ और जब इसके साथ घर का जिक्र हुआ, अब पता चला कि इब्तिदा जिक्र हो रही है चलने की, और कहां से हो रही है? घर से। तो इसम अपने माना पर मुस्तकिल दलालत करता है और तीन जमानों में से कोई जमाना उसके साथ मिला हुआ नहीं होता। और फेल भी अपने माना पर मुस्तकिल दलालत करता है, यानी खुद बखुद दलालत करता है, किसी और कलिमे के साथ जुड़ने का मोहताज नहीं, और उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना भी मिला होता है। जबकि हर्फ जो है वो गैर मुस्तकिल है, यानी अपने माना पर खुद अकेला दलालत नहीं करता। जब तक इसके साथ दूसरे लफ्ज नहीं जुड़ेंगे इसका माना हमें समझ में नहीं आएगा। यही तारीफ इन्होंने मुफरत की थी कि मुफरत या इसम होगा या कलीमा होगा या अदात होगा। बहस जहन में आ गई। इस किताब के शुरू में इन्होंने क्या तारीफ की थी कि मुफरत انہوں نے مفرد کی کیا تقسیم کی تھی؟ مفرد یا تو اسم ہوگا یا کلیمہ ہوگا یا آداب. جس کو نح میں اسم کہتے ہیں منطق میں بھی اس کو اسم کہتے ہیں, جس کو نح میں فعل کہتے ہیں منطق میں اس کو کلمہ کہتے ہیں, اور جس کو نح میں حرف کہتے ہیں منطق میں اس کو ادات کہتے ہیں. تو بات چل رہی تھی یہ نسبت حکمیہ کی. یہ جو نسبت حکمیہ ہے یہ موضوع اور محمول کے درمیان, زیدن قائمن, زیدن اور قائمن کے درمیان کیا ہے؟ نسبت حکمیہ ہے. یاد رکھو یہ نسبت حکمیہ غیر مستقل ہے. یہ کیا ہے؟ کیسے غیر مستقل ہے؟ معنی یہ ہے جب تک موضوع اور محمول نہیں آئیں گے درمیان میں نسبت حکمیہ نہیں آ سکتی. دو لفظ آئیں گے تو درمیان میں پھر کیا آئے گی؟ نسبت حکمیہ. اکیلی نسبت حکمیہ ہو سکتی ہے دو لفظوں کے بغیر؟ نہیں. اکیلی کیا, وہ تو آتی ہی کس کے درمیان ہے؟ دو لفظوں کے درمیان. تو یہ محتاج ہوئی محکوم علیہ کی بھی اور محکوم بہی کی بھی. تو نسبت حکمیہ یا یوں کو نسبت خبریہ وہ مستقل ہے یا غیر مستقل؟ غیر مستقل. وہ محتاج ہے کس کی؟ محکوم علیہ کی بھی اور محکوم بہی کی بھی, یعنی موضوع کی بھی اور محمول کی بھی, یا یوں کو مسند علیہ کی بھی اور مسند کی بھی. تو یہ نسبت حکمیہ غیر مستقل ہوئی. جب یہ غیر مستقل ہے تو اس پر جو لفظ دلالت کرے گا وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ غیر مستقل. اور غیر مستقل اسم ہے کلمہ ہے یا ادات ہے؟ وہ تو ادات ہے. لہذا اس نسبت حکمیہ پر جو لفظ دلالت کرے وہ کیا ہے؟ وہ ادات ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ادات ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ملا تو ہوا استعمال کرنے لگے. یہ جو ضمیریں ہیں غائب کی, ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن, یہ غائب کی ضمیر ہے اس کے لیے استعمال کرنے لگے. اور یہ غائب کی ضمیریں, یہ تو اسم ہے بھائی, ضمیریں ہیں نا, یہ کیا ہیں؟ اسم ہیں. لیکن کس کی جگہ استعمال کر رہے ہیں؟ ادات کی جگہ. تو کہیں گے کہ یہ جو ہوا ہیا وغیرہ کا لفظ مستعار لے لیا اس معنی کے لیے. اس کے لیے ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ ادات بھائی, کیونکہ یہ نسبت حکمیہ کیا ہے؟ غیر مستقل. تو اس کے لیے لفظ بھی کون سا ہونا چاہیے؟ غیر مستقل. اور وہ کیا ہے؟ ادات ہے. لیکن کس کو استعمال کیا؟ ہوا اور ہیا. یہ ہوا ہیا وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں زیدن ہوا قائمن, زیدن ہوا قائمن, یہ ہوا کس پر دلالت کر رہا ہے؟ نسبت پر. منطق میں اس کو رابطہ کہتے ہیں. کبھی یہ لفظوں میں توجہ سے سنو, یہ کبھی رابطہ لفظوں میں ذکر ہوتا ہے کبھی ذکر نہیں. زیدن قائمن رابطہ لفظوں میں ذکر ہے نہیں, اور زیدن ہوا قائمن اب رابطہ کیا ہے؟ لفظوں میں ذکر ہے. تو آگے آپ چل کر آپ کو شرح میں بتائیں گے کہ اگر قضیے کے میں رابطہ ذکر ہو تو تین چیزیں ہو گئیں, موضوع بھی محمول بھی اور رابطہ بھی. تو اس کو ثلاثی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یوں کہیں گے یہ قضیہ ثلاثیہ ہے, یہ قضیہ ثلاثیہ ہے. اور اگر رابطہ کو حذف کر لیں, صرف یوں کہیں زیدن قائمن, ہوا کو کیا کر دیا؟ حذف. رابطے کو کبھی ذکر کرتے ہیں اور کبھی حذف. جب رابطہ نہ ہو تو کتنی چیزیں رہ گئیں؟ دو, ایک موضوع اور ایک محمول. تو اس کو کہیں گے سنائی, تثنیہ سے ہے. یوں کہیں گے قضیتن سنائیتن, یہ قضیہ کیا ہے؟ سنائیہ ہے, یعنی دو جز والا ہے, اس کے دو جز ہیں. تو قضیہ ثلاثیہ بھی ہو سکتا ہے اور سنائیہ بھی. ثلاثیہ کون سا ہوگا؟ جس میں رابطہ ذکر ہو. اور سنائیہ کون سا ہوگا؟ جس میں رابطہ ذکر نہ ہو. تو دیکھو زیدن ہوا قائمن, زیدن کیا ہے؟ موضوع. قائمن کیا ہے؟ محمول. اور ہوا کیا ہے؟ رابطہ. اور رابطہ انہوں نے بتایا وہ ادات ہے. کیا ہوگا؟ رابطہ کیا ہے؟ وہ ادات ہے. ادات ہے تو اس کے لیے استعمال کیا کر رہے ہیں؟ ہوا. حالانکہ ہوا تو اس کے لیے وضع نہیں, ہوا تو اسم ہے, ہوا ضمیر ہے اسم ہے. تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مستعار لیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ یعنی مجازن اس کے لیے ہوا کو اور ہیا وغیرہ کو استعمال کر لیتے ہیں. اس کے لیے عربی زبان میں ہمیں کوئی لفظ ملا نہیں. اصل میں یہ جو منطق اور یہ فلسفہ ہیں یہ یونان والوں کا علم تھا. سمجھ میں آیا؟ अरस्तु, अफलातून, सकरात वगैरह बड़े बड़े फलसफी वहां गुजरे थे, तो फिर मुसलमानों ने इसको, इन उलूम को वहां से लिया। बादशाहों ने बड़े बड़े उलमा मुकरर किए थे जो उन किताबों का तर्जमा करते थे अरबी की तरफ। समझ में आया? उन्होंने जब इन उलूम को मुंतकिल किया अरबी की तरफ तो देखा कि बास जगह राबता हमें मिल नहीं रहा। उस जुबान में राबते के लिए लफ्ज है, जैसे उर्दू में जैद जारिब है, देखो है आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अरबी में देखा तो अरबी में उन्हें ऐसा लफ्ज नहीं मिला, तो उसके लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल कर लिया, हुआ और हिया को इस्तेमाल कर लिया। तफसील शारा में आ जाएगी, आपको बताएंगे कि जो राबिता है ये दो किस्म पर है, एक जमानी है यानी जिसमें जमाना भी होता है, और एक गैर जमानी है जिसमें जमाना नहीं होता। राबिता जमानिया जो है वो अफाल नाकिसा है, काना यकून वगैरह, तवज्जो है। देखो जैद उन कायमुन, क्या तर्जमा, जैद के लिए क्याम साबित है, और काना जैदुन काइमन तर्जमा करो, जैद खड़ा था, देखा माजी वाला जमाना आ गया, तो ये काना जो अफाल नाकिसा है काना यकूनु वगैरह, ये राबिता जमानिया है, इसमें राबिता भी रबत भी देते हैं और जमाना भी है इनके अंदर, तो इनको क्या कहते हैं, राबिता जमानिया। तो राबिता जमानिया के लिए जब उन्होंने उन किताबों को तर्जमा किया अरबी में, तो वहां दो तरह के राबिते थे, कुछ राबिता जमानिया थे और कुछ राबिता गैर जमानी। राबिता जमानिया के लिए तो अफाल नाकिसा इनको अरबी में मिल गए, उन मुसलमान उलमा को उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन राबिता गैर जमानिया के लिए उनको अरबी में कोई लफ्ज मिला नहीं, तो फिर उसके लिए उन्होंने हुआ हिया वगैरह जमीरों को इस्तेमाल कर लिया। बात समझ में आ गई? तो एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज की जगह इस्तेमाल करना, इसको कहते हैं इस्तेआरा। इस्तेआरा असल में क्या माना था, मैंने क्या माना बयान किया, किसी से आरियतन आर्जी तौर पर कोई चीज इस्तेमाल के लिए लेना, तो यहां भी हुआ तो असल में जमीर है लेकिन उसको आरियतन इस माना के लिए ले लिया और इस्तेमाल कर लिया, तो यह क्या है, इस्तेआरा है। बात समझ में आ गई? यानी मजाज है। क्या है? मजाज है। यह माना है वकद उस्तुईरा लहा हुआ, और तहकीक इस राबता के लिए मुस्तआर ले लिया गया हुआ को, हुआ और इसी तरह और जमीरों को मुस्तआर ले लिया गया। हासिल कलाम क्या हुआ कि यहां मौजू और महमूल के दरमियान नस्बत हुक्मिया है, और नस्बत हुक्मिया गैर मुस्तकिल, और जब गैर मुस्तकिल है तो इस पर जो लफ्ज दलालत करे वो भी क्या होगा, गैर मुस्तकिल, और गैर मुस्तकिल क्या है, अदात, तो अदात होना चाहिए, लेकिन ये तो क्या इस्तेमाल करते हैं मंतिकी, हुआ वगैरह। सवाल, भाई हुआ कैसे इस्तेमाल करते हो, वो तो मुस्तकिल है और ये तो क्या है, अदात होना चाहिए गैर मुस्तकिल। तो जवाब दे दिया कि भाई ये मुस्तआर लिया गया है, हमें कोई लफ्ज अरबी में मिला नहीं, तो मुस्तआर ले लिया इसको अदात के लिए। ये माना है वकद उस्तुईरा लहा हुआ, और तहकीक इस राबते के लिए मुस्तआर ले लिया गया हुआ को। व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो, फशर्तियतुन, तो फिर ये कजिया क्या है, शर्त। व इल्ला, मैंने आपको बताया था ये इल्ला से पहले वाव आ जाए तो ये हर्फ इस्तेस्ना नहीं है, ये दरअसल किससे मुरक्कब है, इन और ला से। आई व इल्लम यकुन कजालिक, और अगर ऐसा ना हो, फशर्तियतुन, तो फिर वो कजिया क्या है, शर्ती है। इन्होंने आपको बतलाया था कि कजिया जो है, कजिया वो कौल जो सिदक और किजब का इहतमाल रखे, फिर इसके अंदर अगर एक शय का सबूत हो दूसरी शय के लिए या नफी हो तो वो कजिया हमलिया है, और अगर ऐसा ना हो, व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो, फशर्तियतुन, तो वो क्या है, कजिया शर्तिया है। मालूम हुआ कजिया दो किस्मों में बंद है, या वो हमेशा क्या होगा, हमलिया। हमलिया कब होगा, जब इसमें एक शय का सबूत हो दूसरी शय के लिए, या एक शय की नफी हो दूसरी। अगर वो हमलिया नहीं तो फिर वो क्या है, शर्तिया है। तो कहते हैं वह इल्ला फशर्तियतुन, और अगर ऐसा ना हो, क्या माना, क्या ना हो, एक शय का सबूत दूसरी के लिए या एक शय की नफी दूसरी शय से ना हो, फशर्तियतुन, तो वो क्या है, शर्तिया है। वह युसम्मल जुजुल अव्वल मुकद्दमन व सानी तालियन, और इसके पहले जुज को मुकद्दम कहते हैं और दूसरे जुज को ताली कहते हैं। قضیہ حملیہ کے پہلے جس کو کیا کہتے تھے، یوں کہ محکومن علیہ کو کیا کہتے تھے؟ موضوع، اور دوسرے کو محمول. لیکن جبکہ قضیہ شرطیہ میں پہلے جس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدم، اور دوسرے جس کو تالی. مثلا ان کانت الشمس طالعتن فالنہار موجودن، ان کانت الشمس طالعتن، اگر سورج طلوع ہے، فالنہار موجودن، تو دین موجود ہے. تو ان کانت الشمس طالعتن یہ پہلے آیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں مقدم. مقدم کا کیا معنی؟ جس کو مقدم پہلے کیا گیا ہو، پہلے لایا گیا ہو، تو پہلے جو مقدم. اور تالی، تلا یتلو طلوون کا معنی ہے پیچھے آنا، ایک چیز کے بعد آنا. تو فالنہار موجودن، دیکھا، ان کانت الشمس طالعتن فالنہار موجودن، تو النہار موجودن بعد میں آ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے، اس لیے اس کو تالی کہتے ہیں. تلا یتلو طلوون فہوا تالین، تالی کا کیا معنی؟ پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا. تو پہلے قضیہ شرطیہ کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مقدم، اور دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں. ان کانت الشمس طالعتن یہ کیا ہے؟ یہ مقدم ہے. اور فن نہار موجودن یہ کیا ہے؟ تالی ہے. یا یوں کہو کہ قضیہ شرطیہ کے اندر جو محکوم علیہ ہوتا ہے وہ ہے مقدم، اور جو محکوم بہی ہوتا ہے وہ ہے تالی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قضیہ شرطیہ کے اندر جو محکوم علیہ ہے، یعنی جس پر حکم لگایا جا رہا ہے، وہ ہے مقدم، اور جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ہے تالی، یعنی وہ محکوم بھی ہے. بھائی تو کہتے ہیں وَيُسَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مُقَدَّمًا، اور اس کے پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں. وَالثَّانِي تَالِيًا، اور دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں. حاصل کلام یہ کہ آج ہم نے تصدیقات کی بحث شروع کی، اس سے قبل معرف کا بیان ہوا تھا. میں نے آپ کو بتلایا کہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہیں، لہذا معرف کے بیان کے بعد حجت کا بیان چاہیے، لیکن حجت کا سمجھنا تصدیقات پر موقوف ہے، اس لیے پہلے تصدیقات کا بیان شروع کیا. جیسے کہ معرف کا سمجھنا کلیات خمسہ پر موقوف تھا، تو اس سے پہلے، معرف سے پہلے مصنف نے کلیات خمسہ کا بیان کیا. اور تصدیقات میں پھر انہوں نے آپ کو سب سے پہلے قضیہ کے بارے میں بتلایا. قضیہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ وہ قول ہے جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہو، اور اسی کو نحو کے اندر جملہ خبریہ کہتے ہیں، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اور پھر انہوں نے بتلایا تھا کہ قضیہ کے اندر اگر اس میں حکم لگایا جائے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے، یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہو، تو اس کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں. اور پھر یہ دو قسم پر ہے، یا یہ موجبہ ہوگا یا سالبہ. اگر ایک چیز کا ثبوت ہے دوسری چیز کے لیے تو اس کو موجبہ کہیں گے، اور اگر ایک چیز کی نفی ہے دوسری چیز سے تو اس کو سالبہ کہیں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ قضیہ حملیہ جو ہے، اس کے اندر جو محکوم علیہ ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، کیونکہ اس کو مقرر کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے حکم لگانے کے لیے. اور جو محکوم بھی ہے قضیہ حملیہ کے اندر، اس کو محمول کہتے ہیں. محمول یعنی اس کا حمل کیا گیا ہے، یعنی اس کا حکم لگایا گیا ہے موضوع پر، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمول. اور وہ چیز جو نسبت پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ. اور رابطہ تو غیر مستقل چیز ہے، لہذا اس پر دلالت کے لیے ادات ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ عربی زبان میں کوئی رابطہ غیر زمانی ان کو نہیں ملا، تو انہوں نے اس کے لیے ہوا کو مستعار لے لیا، اس کو استعمال کیا. تو یہ جو ہوا کو رابطہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ مستعار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مجازن اس کو استعمال کیا جاتا ہے، حقیقت میں تو یہ اسم ہے، لیکن ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی جگہ استعمال کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مجاز. بھائی یہ کیا ہے؟ مجاز. اور اگر ایسا، اور اگر قضیے کے اندر ایک شے کے لیے دوسری شے کا ثبوت، یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی نہ ہو، تو پھر وہ قضیہ شرطیہ کہلاتا ہے. اور قضیہ شرطیہ اس کے دو جز ہوتے ہیں، پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.